ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दे वरं जड्डञ्जाबुडरुचिसं विदधतङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदयसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो चलभुजं ध्यायेन् श्री श्री गुरु गौरांग गंधार्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की अहित कृपा से हम लोगों की परिक्रमा आज तक निर्विघ्न रूप में और अच्छी तरह से संपन्न हुई। आज एकादशी दिन था और यहाँ की परिक्रमा पंचक्रोशी परिक्रमा भी संपन्न हुई। माधुर्य कादंबिनी भक्ति के द्वारा हृदरोग काम का विनाश होता है। कहते हैं श्री चक्रवर्ती ठाकुर, कर्म योग ज्ञान के साधक या अधिकारी काम का दोष होने से या दुराचारों के आ जाने से हर प्रकार के निंदित होते हैं और सर्वनाश को प्राप्त करते हैं। उनका सर्वनाश होता है यदि काम रहे, दुराचार रहे। किंतु भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता। भक्ति मार्ग में काम आदि दोषों को रहते हुए भी मनुष्य भक्ति का अधिकारी होता है। भक्तों का अलंग भक्ति के अंगों का पालन करते ही उनके हृदय में परम स्वतंत्र भक्ति देवी आविर्भूत होती है और अत्यंत शीघ्र समस्त पापों को दूर कर देती है। ग्रंथकार महोदय शास्त्र के प्रमाण से इस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। भक्ति के उदय में प्रथम अंग है श्रद्धा और पश्चात रति होती है। श्रद्धा या रति महत्पुरुषों के मुख से भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करने से हृदय में उदित होती है। कैसे होती है? वही मध्यम अधिकारी की कृपा से हृदय में भगवान लीला कथाओं को श्रवण करने से उदित होती है। भगवान की समस्त रसमय लीलाओं का सार है रास, रासलीला। उस दिव्यतम रासलीला के वर्णन के बाद उसकी फलश्रुति श्रीमद्भागवत में बतलाया गया है, विक्रीडितम ब्रजवधूभि इदं च विष्णु श्रद्धान्वित अनुसृणियादथ वर्णयेत ज भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाशु अपिहनोत्य अचिरेण धीर। जैसा कि पहले कहा गया है, इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की ब्रज गोपियों के साथ रासलीला का निरंतर श्रद्धापूर्वक श्रवण कीर्तन करने से पराभक्ति प्राप्त होती है। और शीघ्र ही हृदय रोग रहने पर भी श्रद्धा पूर्वक रासलीला का श्रवण और करता अनुकीर्तन किया जा सकता है। हृदय रोग रहे तभी और उसे पराभक्ति की प्राप्ति होती है और शीघ्र ही पराभक्ति के प्रभाव से हृदय रोग जितने काम विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। इस श्लोक में भक्तिं प्रता परां भगवती पति लभ्य, इसमें पराभक्ति लाभ करिए असमापिका क्रिया है, समापिका नहीं कर। इसके बाद में कामम हृदय रोग मासु अपि हिनोत, अर्थात हृदय रोग काम को शीघ्र ही परित्याग किया करता है। इस श्लोक में समापिका क्रिया के प्रयोग होने से काम के रहते हुए भी पराभक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्ति के बाद तत्पश्चात परम स्वतंत्र प्रबला भक्ति के प्रभाव से हृदय रोग अर्थात काम की नाश की बात जानी जाती है। इस श्लोक में वैष्णव तोषणी टीका में लिखा गया है, अत्र तु हृद्रोगा अपहना पूर्वमेव परम भक्ति प्राप्ति तस्मात् परम बलवत् एव इदम् साधनम् इति भावः। साधना के द्वारा पहले हृद्रोग या कामना वासना का नाश और तत्पश्चात साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है, यही सब नियम है। पहले साधन हो और साधन के द्वारा तस्मात् कामना वासना का नाश और तत्पश्चात साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। किंतु यहाँ पर हृदय रोग काम के रहने पर भी श्रद्धा पूर्वक अनुसृणियात अथवा वर्णित जह वर्णन करे तो पराभक्ति पहले प्राप्त होती है। इसे रासलीला श्रवण कीर्तन आदि पराभक्ति प्राप्ति का अतिशय बलवान साधन है। इसलिए श्रवण कीर्तन इत्यादि है और उसमें भी रासलीला का हो और श्रद्धापूर्वक हो तो सब कामना वासना सब दूर हो जाती है। यहाँ पराभक्ति से किसको समझते हैं, ये पराभक्ति क्या है, गोपी प्रेम जैसे सर्वोत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति को ही समझना चाहिए। हृदय रोग हृदय में काम के रहने की तो बात ही अलग रहे, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी जो अनन्य रूप से भगवान का भजन करता है उसके भजन की और भक्ति पथ में कोई निंदा की बात किसी शास्त्र में नहीं सुना जाती। गीता में ऐसा कहा गया है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक व्यवस्थो हि सः। अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं वे यदि अत्यंत दुराचारी भी हो तो उन्हें साधु ही मानो, उनकी किसी प्रकार से निंदा मत करो, साधु समझो, क्योंकि उनका अध्यवसाय उनका भक्ति का जो साधन है अनन्य वो साधु ही है। अनन्य किसको कहते हैं, जो व्यक्ति मुझको छोड़कर किसी भी देवता देवी का भजन नहीं करता वो अनन्य है, और मेरी भक्ति को छोड़कर ज्ञान कर्म योग इत्यादि का अनुष्ठान भी नहीं करता है, मेरी तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति यदि परहिंसा भी करता है परदार गमन भी करता है पर द्रव्य चोरी करके या लूटना ये भी करता है, ऐसा दुराचार परायण है तो उसको साधु या भक्त ही मानो, नहीं मानो तो भगवान की बात का उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन करने से महापराध होगा। इस बात को यदि किंतु व्यक्ति अनन्य है, कहते भगवान का अनन्य भक्त हो करके उनको ऐसी संभावना नहीं है कि दुराचार में फंसेंगे, नहीं पर किंतु अपी जो कहा यदि कदाचित ऐसा देखा जाए, पाप भी करेंगे दुराचार भी करेंगे भजन भी करेंगे तब तो गया चौपट, नवा अपराध हो गया। ऐसा नहीं, कदाचित किसी कारण से रामानुज संप्रदाय में कुछ इतिहासों में ऐसा देखा जाता है और भी देखा जाता है, तो ऐसा अनन्य भजन परायण होने पर इन दुराचारों का रहना यद्यपि असंभव है, फिर भी कदाचित यदि ऐसा देखा जाए तो उसे साधु मानो। इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका में कहते हैं कि भक्तों के प्रति भगवान की आसक्ति अत्यंत स्वाभाविक है, उनका दुराचार, उनका परद्रव्य लुंठन, हिंसा करने से जम इसका विचार नहीं करते, उसका विचार कौन करेगा, भगवान ही, क्योंकि उनके अपने जन है, अनन्य तो हो गया है। इसलिए भक्त यदि दुराचारी भी होता है तो फिर भी उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, भगवान उसे अत्यंत उत्तम कर देते हैं। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए श्लोक की अवतारणा हुई है। ट्रांसलेशन,
so today is Ekadasi, and by the mercy of Sri Guru Gauranga we completed our Panchakrosi, the circumambulation of Vrindavan Dham, and now continuing our Madhurajakaram bidding. Therefore, continuing on from the day before, the conclusion is that only by one point of devotion, then ritro, the disease of the heart, or lust, can be destroyed completely. We discussed that the performers of karma or jnana, if there is some fault in their performance of sadhana or some fault in their character, then everything is lost. They lose the result of their sadhana also. But bhakti is not like this. Despite some fault in the performance or some fault in the devotee, then anyone can perform bhakti. Bhakti is supremely independent. Therefore, anyone who performs the angas of bhakti, then that independent bhakti may enter the heart of that devotee, and she herself will cleanse the heart of the devotee independently. There is so much evidence of this given in the Shastra, and Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur now is giving that evidence. There we have heard, one first by hearing Harikatha, one attains Shraddha or faith. That develops into Rati or Bhav Bhakti. How does it enter? By hearing Lila Katha from the Madhyamadikari. Especially of all Lila Katha, the essence of all Lila is Ras Lila. What is Ras Lila? Krishna's performance of pastimes with the gopis. This is called Ras. Therefore, Srimad Bhagavatam, it is said, Rikritu Brajapada Viya Tamsi Vishnu Svadatva Tat Anayusulaya Tatvanaya Va Bhakti Param Bhagavati Pratigrupta Karma Vidro Tachinati Iti Achineta Dhira. Therefore, it says here, Subhita Goswami describes one who continuously hears and performs Shravan of Krishna's pastimes with the gopis. And then, in accordance to what he has heard, performs kirtan of that same katha. Then, Harabhakti, supreme devotion, enters the heart first by performance of shravan and kirtan. Therefore, even though some lust may remain, that Harabhakti will enter because she is independent, and then by the influence of that Harabhakti, all the jhanas, especially lust, are completely dissipated. Therefore, it is not a fact that first we should become free from lust and then parabhakti is attained, because bhakti is independent. Therefore, she may enter despite the presence of lust. In Vaishnava Toshnitika, Sri Vishnu Chandravati Thakur has said, generally, the sequence of attainment of bhakti is first sadhana, bhakti, the achievement of shraddha, then performing sadhana, the anathas will be dissipated, then one achieves rati. But this rasa-lila is so powerful, by performing shravan and performing kirtan according to what one has heard, anukirtan, that rasa-lila guitar is so powerful, if one hears with faith, with complete faith, then that parabhakti enters first and destroys all remaining anathas. That is the super excellence of hearing this pastimes. Therefore, what is parabhakti? Parabhakti means nothing else except the most elevated gopi prem. Therefore, in Bhagavad Gita, Krishna says, even if the most fallen person who is addicted to all types of bad habits, if he is ananya bhav, if he is one-pointed in determination, he must never be criticized in any circumstances. Krishna himself says in Sri Bhagavad Gita, api chet sudaracharo vadamam manavas sarve himantavya samlik prasthi yavastihisa. Krishna says, but we should understand what is the meaning of ananya bhakta. Generally we say one-pointed, but here Krishna says, even if he is durachar, if he is of despicable behavior, even if he is a thief or a hunter of women, still Krishna says, I say he is a sadhu, then he should not be criticized in any circumstance. What is the definition of ananya or one-pointed? Then, leaving Krishna, that person will never worship or perform worship of any demigod or demigoddess. Also, they will never take shelter of any other type of sadhana, like karma or jnana. They will always take shelter of bhakti. Therefore, if someone sees such a one-pointed devotee whose determination is fixed in the performance of bhajan, but still is addicted to some bad habits and criticizes them, because of crossing the words of Krishna in the Bhagavad Gita, that person becomes a maha aparadi. But does that mean that we can do bhajan and do everything, steal, hunt women, drink, all that? No. In such a person, that will simply be nam aparad. Therefore, the conclusion is that such debauched character or debauched activities is generally never seen in such a devotee. But apichet or kadachit means sometimes, in some extraneous circumstances, in some accidental case. This is not the general rule. Therefore, it may be seen that bad activities and bad behavior is never present in a pure devotee, but there may be some chance by some accident that such a thing will be seen in their character. Therefore, the conclusion is, in the one-pointed devotees, their attraction towards Krishna is completely natural. Therefore, we have no right to criticize such a one-pointed devotee. Only Bhagavan can give judgment on such a person. And even if a devotee does fall down to some accidental poor behavior, the conclusion is their bhakti is never destroyed.
Just like
there is many examples in Sri Ramanuja Sampradaya also.
Oh. किसी किसी का मत ऐसा है, विचार ऐसा है, जो व्यक्ति जितने अंश में भगवान का भजन कर रहे हैं उतने अंश में साधु हैं, और जितने अंश में दुराचार करते हैं उतने अंश में वे असाधु हैं। इसको उत्तर में चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, जे गीता ऐसा कर साधु रे, उसे साधु ही मत, संपूर्ण रूप से साधु जा, आंशिक रूप में नहीं, एवकार के द्वारा किसी भी अंश में उसे असाधु मत समझो। सर्वांश में ही समझो। इसका कारण है भगवान उसके साधु मानने का प्रस्तुत करते हैं कि वह मेरी भक्ति में सम्यक रूप से निश्चित बुद्धि, हमको छोड़कर के किसी भी देवता देवी की उपासना नहीं करता, हमारे लिए ही सब कुछ करता है, किंतु हठात दुराचार में गया है। भक्ति देवी करते का वही अनन्य भजन करते, एक दिन भक्ति देवी उस सब दुराचारित्व को सब दूर कर दे, किंतु अभ्यास कर लिया है बदमाशों ने, जिन लोगों ने, वो उनका ने उनका और वज्र लेप हो जाएगा, नाम के बल पर पाप हो जाएगा। गीता में कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। हे कौन्तेय, तुम कहो, तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, भजनिष्ठ व्यक्ति अत्यंत शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। क्यों? अनुताप करता है, हाय हाय हमसे ये दुराचारित्व हो गया। अनुताप की आग में उसका दुराचारित्व तो सब कुछ जल करके खत्म हो जाता है, भक्ति देवी कर देती है, और तब वो शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, उसका कभी नहीं विनाश होता है। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, तुम भक्त, हमारी प्रतिज्ञा कोई भक्त प्रतिज्ञा करेगा तो टूट जाएगी, किंतु तुम भक्त है, तुम प्रतिज्ञा करेगा जरूर हमको करना पड़ेगा। तुम प्रतिज्ञापूर्वक कर सकते हो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। जो लोग गीता के इन वचनों का पूर्वापर विचार न कर, उनका मर्मार्थ तथा तात्पर्य न समझ कर, अपिचेत सुदुराचारों श्लोक को देकर भजन करने के साथ साथ बुद्धिपूर्वक दुराचार करते हैं, उनके लिए अनुतप्त नहीं होते, उनका साधित्व लेश भी नहीं है, तनिक भी वो साधु नहीं है। अधिकांत नाम के बल पर पाप आचरण करने की प्रवृत्ति के कारण भयंकर अपराध उनका हो जाता है, जिससे छोड़ करके कुछ दिनों में ही उनका वो रहा सा भजन का आभास भी दूर हो जाए। ज्ञान मार्ग में जो ज्ञानी साधक है, तनिक भी दुराचार है तो उसका ज्ञान सिद्ध नहीं होता। श्रीमद्भागवत में कहते हैं ज्ञान मार्ग का आश्रय करने वाले जिस सन्यासी का मन और इंद्रिया असंजत रहती है, ज्ञान वैराग्य रहित प्रबल इंद्रिया सार्थिक बुद्धि के द्वारा परिचालित होकर वह केवल जीव का निर्वाह के लिए ही दंड धारण करने का अभिनय करता है। पक्षांतर में भक्त दुराचारी होने पर उसकी निंदा नहीं देखी जाती। अजामिल महादुराचारी था और पूर्व अभ्यास के वशतः उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया और नारायण को ही लाड प्यार बुलाता था, और मृत्यु के समय में उस अपने बेटे की याद आई और नारायण नारायण पुकारा। महादुराचारी ऐसा कोई पाप नहीं जो नहीं किया हो, किंतु जम के दूतों को भगा दिया। वैष्णव के दूत आ करके बोले, क्या ये महाभक्त है, इसका कोई भी पाप टाप नहीं है। नमाभाष्ये सांकेतं परिभाष्यं स्तौभम हेलनम एव वा अशेष अगह, इसका कोई भी नहीं है, और उनको मार करके भगा दिया। इसलिए अजामिल महादुराचारी होने पर भी वैष्णव के दूतों ने, विष्णु दूतों ने उसको भक्त ही बतलाया, और उसी से ही नामाभास से उसकी मुक्ति भी हो गई, अंत में वैकुंठ में भी गमन किया। ट्रांसलेशन
So, Sri Krishna Chakravarti Thakur is saying, some people think that many angas of devotion that person performs, or that once they are engaged in bhajan, then to that degree they are to be called a sadhu. And in the same way that much they are addicted to bad behavior, to that degree that person is not a sadhu. But this is completely incorrect. Krishna says, he is not a partial sadhu. That ananya devotee, that one-pointed devotee, he is complete sadhu. Why? Krishna himself says, because he is fixed in his determination to serve only me, he will never worship any demigoddess or demigod. Everything they perform for me, therefore because he is one-pointed in bhakti, therefore Bhakti Devi herself will cleanse the heart of that devotee. But we should understand clearly that this performance of sinful activity in the devotee is to be considered accidental, not to be habitual. Someone who performs sin, muripurva, knowingly, with their intelligence, understand? With complete knowledge and knowing everything, then they perform sin, this verse is not applicable for them. Such a person is never to be considered a sadhu. That person is a fearful offender at the feet of the Lord, and by continued offense and performance of nampapuri, committing sins on the strength of a holy name, that person's shadow of bhakti will also disappear. Therefore, that one-pointed devotee, his fall down is not like that. By anuttara, by repentance, that fire of repentance will cause any remaining shadow of bad activity or attachment to be burned to ashes. Therefore, chitram bhavati dharmatma. Krishna says, I say he is completely religious, nama bhakti pranashati. O Arjuna, because you are a devotee, you should declare it very boldly. My devotee is never destroyed. Therefore, the jnanis who are of bad character, the Bhagavatam decries them. They will not achieve perfection if there is some fault in their character. Instead, they move here and there simply filling their stomach. But on the other hand, devotee like Ajamil, who was addicted to the worst types of sinful behavior, indeed there was no sin he had not performed, still, out of some previous good fortune, some previous habit, he gave the name of his son as Narayan. At the time of death, he remembered his son and chanted, Narayan, Narayan. As a result, the Yamadutas, when they came to catch him, the Yamadutas were expelled by the Vishnudutas, who said, he is a great devotee. He has no sins. His sins have been burned to ashes. He is pure. Because Ajamil chanted Namabhas, which are of four types, Sankhetyam Parihasyam Vastobam Hilaya Evavai Vaikuntha Namagrahamiya Shesha Agavavidu. If one performs this chanting of the name as a semblance of chanting, then even then there is no question of sin remaining in a devotee, or to speak of someone who is an Anyabhak, who is one-pointed.
महाप्रभु जी के अवदान के संबंध में कुछ बतलाओ तो वर्णन करो.
कोटि मार्ग विदत्त विदत्त नाम कोटि रोग दर्शन गांधी जम्बूजी कोटि सुधाचीर मधुमिनी सुधाचीर माधवी के कोटि गौरव देव सत्या प्रणय सप्रदे दर्शिता चंद्र कोटि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म निखिल अपृष्ण विष्णुपाद अस्तोत्र श्री भक्ति जीवन जनार्दन रूपये महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके ऐसे कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मध्य तथा गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अस्तोत्र श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके ऐसे कृपा की प्रार्थना उपस्थित समस्त वैष्णवगण मातृजन सभी के चरणों में जथा जो प्रणाम करते हुए आप सबों के हृदय की कृपा की प्रार्थना। हरि पुष्पाद महाराज जी का आदेश से महाप्रभु जी का जो अवदान है उसके संबंध में कुछ सर्वाना जो हमारे गुरुगण
अंग्रेजी में बोल सकता है बोलो अंग्रेजी में
स्पष्ट नहीं है तो श्रील महाराज सेठ जुम्मी के वर्ड ग्लोरी ऑफ महाप्रभु वाट महाप्रभु गेव टू अस व्हाई मस्ट बट आई थिंक इंग्लिश स्पीकिंग इज आई नो फील हैप्पी कैन स्पीक बट
वी फील हैप्पी
आज इट्स बिकम लाइक कंप्लीट ऑफ because how cannot come by this English so better Kunpa Tamodar Maharaj will after translate it or Vishnu Daivar Maharaj after translating so this is good because this is not my language anymore
Maharaj bol to bolo
bolo Hindi ko
तो महाप्रभु जी का जो वैशिष्ट है जो अवदान है सच में हम लोग महाप्रभु जी का विशिष्ट बोधी है। उन्होंने जो कुछ हमारे गुरु वर्गों को प्रदान किया वही हम लोगों का जीवाश्म है। जितने भी हमारे आचार्य चार रूप गोस्वामी पाद हो जीव गोस्वामी पाद हो सनातन गोस्वामी पाद हो ये सभी के जो सिद्धांत है जो इनके जो लेखनी है सबके मध्य महाप्रभु जी का ही मनोभाव है। उन्हीं का जो विचार है उनका जो अवदान है उन्हीं चीज़ों के हमारे गुरु वर्गों ने रखा है। जो भी आदि टीका टिप्पणी भागवत आदि का अद्भुत दामोदर अष्टका या माधुर्य कादंबिनी आदि जो कुछ ग्रंथों का अनुशीलन कर रहे हैं उनके मूल में श्रीमद् महाप्रभु महाप्रभु जी तो कहीं पर अपने हाथों से कुछ ग्रंथ आदि का प्रणयन नहीं किए लेकिन उनके मुँह से जो जो शब्द निकले उन्हीं को उनके जो अनुचर ग्रंथ है अपने शिक्षा तक आदि में और भी जितने साथ में भक्ति लता में सिंधु आदि सब महाप्रभु जी के भजन का ही उनका वैशिष्ट का ही दान है। जो कहने की आवश्यकता नहीं महाप्रभु जी ने हम लोग को क्या नहीं दिया जैसे वैशिष्ट को उनके अवदान को देखना है तो उनके शिक्षा तक में देखिए आठ या श्लोकों में ऐसे तत्व को उन्होंने रख दिया कि यदि कोई शिक्षा तक का सही से अनुशीलन करे तो समस्त वाद विवाद मतवादों से ऊपर उठ करके अपने साथ साधन में स्थित हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उसके सामने किसी तरह की युक्ति से उसको अपने भजन से हटा नहीं सकता क्योंकि शिक्षा तक एक ऐसा सुंदर महाप्रभु जी का अवदान देन है कि जहाँ पर जितने वाद विवाद है सबको इस आठ श्लोकों में समाप्त कर दिए और बहुत कुछ है जिसको लेकर के जीव गोस्वामी पाद आदि और आचार्यों ने बहुत ही विवेचना की। ऐसे महाप्रभु जी के अनंत शिक्षाएं हैं उन्होंने ब्रज के संबंध में भी कैसे संबंध से युक्त होकर भजन करना है कैसे ब्रजवासियों को अनुगमन करना है इत्यादि बोले और जो उसके विरोधी लोग हैं जो ब्रह्मवादी को मानते हुए जो भगवान के वास्तविकता को स्वरूप को नहीं मानते उनको भी उन्होंने चूर्ण से चूर्ण किया। जो कुछ भी किया महाप्रभु जी की उसी बात को उसी सब तत्वों को जो स्वामी पादों ने लिया यहाँ पर कहने का तात्पर्य किस पद को महाप्रभु जी ने जो अवदान दिया कोई ऐसा पक्ष नहीं जिस पक्ष को उन्होंने छोड़ा, चाहे किसी भी तर्क की बात हो, जुक्ति का हो, कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी आचार्य को, हर पक्षों को उन्होंने समाधान सामंजस्य किया, जिनको बाद में जीव गोस्वामी पाद जी अपने तत्व संदर्भों में महाप्रभु जी का कितना जो सिद्धांत है सबको रखे, ये उनका तात्विक पक्ष। जीव गोस्वामी पाद जी बोले कि महाप्रभु जी का जो अवदान है अचिंत्य भेदा भेदवाद अस्मत अचिंत शक्ति महत्व, ये मेरा मत नहीं, हमारे महाप्रभु जी का मत, श्री चैतन्य महाप्रभु मत विरम। वहां पर बोले देखो भगवान की शक्ति ऐसे अचिंत है, जब शक्तयो बदताम वादी नाम विवाद संवाद भूव भवंती कुर्वंती चैसा मूरात्म मोहम तस्मै नमो अनंत गुणाय भुवने। बोले भगवान की ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के संबंध में कहने पर व्यक्ति वाद विवाद में फंस जाता है, क्योंकि अविचिंत है। जब शक्तयो बदताम वादी नाम विवाद संवाद भूव भवंती, और यही कारण है कि अनंत प्रकार के वाद मतवाद इस संसार में खड़ा हो गए, अनेक प्रकार के मायावाद, मायावादों में कितने प्रकार के विवाद हो गया, प्रतिबिंबवाद, परिच्छेदवाद, ब्रह्म जीव ऐकवाद, विवर्तवाद, इतने जो वाद थे, अगर इन वादों से संवाद न किया जाए तो भक्ति में कैसे प्रवेश हो। सजीव गोस्वामी पाद जी महाप्रभु जी के सिद्धांतों को कहते, जिनके शक्ति के संबंध में कहने में विवाद संवाद हो जाता है, दूसरे पक्ष वाले भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ही आप कुछ भी कहो, शंकराचार्य के मतों को सबसे पहले जीव गोस्वामी पाद जी ने जितना जोरदार ढंग से खंडन किया आज तक कोई आचार्य ऐसा नहीं कर पाए। शंकराचार्य जो भी साधक संकर है, लेकिन फिर भी बोले जगत को मोहित करने के लिए हमें उनके मतों से बच के अपना भजन करना हो, जासूरी प्रवृत्ति के वो तो उसमें फंस ही जाएंगे, लेकिन जिनको थोड़ा भी गुरु वैष्णव कृपा प्राप्त करना है उनसे बचना हो। उनके जो सिद्धांत था उनको जीव गोस्वामी जो उन्होंने कहा कि श्लोक अर्धे ने प्रवच्छामि यदुक्त ग्रंथ कोटु भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव ना पर। शंकराचार्य के पूरे शास्त्रों का जो सूत्र है, पूरे व्याख्या का जो सूत्र है, वो केवल दो तीन बातों में समाप्त कर दिया, आधा श्लोक में बोल दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव ना पर। जीव गोस्वामी पाद जी बोले ब्रह्म सत्यम, ये तो बात सही है, लेकिन तुम जिस ब्रह्म को सत्य मानते हो उसकी अस्तित्व कहाँ है, उसकी प्रतिष्ठा कहाँ है, तुम तो केवल ब्रह्म को मान रहे हो, लेकिन ब्रह्म का जो प्रतिष्ठा है, ब्रह्म कौन है, उस पर तत्व का अनुशीलन करो। एक अमेव परम सत्य स्वाभाविक अचिन्त सत्य चतुर्धा अवशिष्टते स्वरूप तद्वैभव रूप जीव और प्रधान रूपेण। तो तुम केवल एक ब्रह्म को एक पद को मानने से नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा सृष्टि जलपद ही निर्विशेष है, श्रुतियों में जहाँ पर कहीं पर ब्रह्म को निर्विशेष निर्विकार इत्यादि जो बोला वो केवल अवचित्य के कारण बोला, एक पक्ष में बोला, सर्व पक्ष में नहीं, और दूसरे पक्ष में तुरंत बोले उनका जब भी हाथ नहीं है, लेकिन अपानी पाद जमनो कृष्ण। और निर्विकार का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई नहीं, उनका अप्राकृत विकार है, राधा कृष्ण प्रणय विकृत, अप्राकृत गुणों से, अप्राकृत विचारों से, विकारों से, अप्राकृत स्वरूपों में अवस्थित, उसको एक पक्ष लेने से नहीं होते। तुम्हारा जो ब्रह्म है जिसको तुम सत्य मान रहे हो, वो ब्रह्म को हम सत्य नहीं मानते, क्योंकि उसकी तुम कोई प्रतिष्ठा ही नहीं की। ब्रह्म का जो परम ब्रह्म है उस संबंध को तुम वस्तु को ज्ञान करो। दूसरी बात क्या, तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन जगत कैसे मिथ्या होगा, ये जो भी कह रहे महाप्रभु जी का सिद्धांत। सदी रमुद्दिशम सदी की चेन नन तर्क हतम व्यवचरती क्वच क्वच निशान तथय वय व्यवहित विकल्प सिद्वंध परंपराया भ्रमयति भारति तौर वृद्धि विरुक्त जन। कोई भी देव इस बात को मानते थे इसके मन का स्पष्ट है सदी रमुद्दिशम सदी की ये पूरा विश्व सत्य जतो वही वाणी भूतानि जायन्ते, सत्य उत्पन्न होने के कारण जगत भी सत्य है। कहीं कहीं पर जो मिथ्या आदि कहा गया केवल वैराग अर्थम असत वचन, वैराग के लिए कहा गया, लेकिन वास्तविक पद में सर इधम उत्तम सर ही, क्योंकि अगर संसार को झूठा मान लिया जाए तो जगत व्यवहार ही रुक जाएगा, क्योंकि कभी भी झूठे वस्तु से व्यापार नहीं हो सकता, संसार नहीं हो सकता। सर इधम उत्तम सर ही चेन अनुसार कहा था जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि श्रुति का कोई तर्क का स्थान ही नहीं है। बोले नहीं नहीं कभी कभी असत वस्तु से भी व्यापार करते हुए देखा गया है, व्यवचरती को कहीं कहीं पर व्यवचार भी हो रहा है। कई बार ऐसा होता है झूठे 500 के नोट से भी व्यक्ति बाजार कर लेता है, नकली नोट से असत से भी सत्य उपलब्धि हो जाती है। वस्तु खरीद लिया जाता है तो फिर इसको कहते हैं सत्य माने असत्य, असत से भी व्यापार करते हुए देखा गया। कहते हैं हाँ व्यवचरती को अच्छा कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है, बड़ा अंध परंपरा है, जो अंधे लोग हैं जिनको उस वस्तु का ज्ञान नहीं, उस रुपये की पहचान नहीं है, वो तो नकली नोट को असली मान लेगा, लेकिन जो विवेक संपन्न है तुम्हारे नकली को कभी नहीं असली मानेगा। और कहीं ऐसे जगह पर चलेगा तो हो सकता पकड़ के जेल भी भेज, तो अंधों के बीच में कभी कभी ऐसा देखने को होता है। क्योंकि जो तुम विवर से बात कर रहे हो कि जगत विवर्त है ही नहीं, रस्सी में सर्प का भर्म, तो जब जगत विवर्त है ही नहीं तो ये तो अस्तित्वहीन वस्तु, उससे वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। जैसे उदाहरण देते जी को सही पास स्थिति में रजत का भर्म, वास्तव में वहां स्थिति में रजत नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में जो रजत की परिस्थिति हो रही है उससे पात्र का रचना नहीं हो सकता, और उस पात्र के द्वारा भोग भी नहीं लग सकता क्योंकि वहां अस्तित्व ही नहीं रजत का। लेकिन रजत तो अपने स्थान में है कि रजत झूठा है, स्थिति में रजत नहीं है, रस्सी में सर्प नहीं, लेकिन सर्प कहीं अधिष्ठान है और कहीं पर चांदी भी है, और उससे पात्र ही बन रहा है, उसमें भगवान का भोग भी लग रहा है, और उससे दिव्य वस्तु को उपलब्धि हो रही है। जो कोई जैसे कोई 10 रुपया भगवान के आगे चढ़ा रहा है तो क्या असत्य है, और यदि असत्य है तो उससे नित्य वस्तु कैसे प्राप्ति हो रही है, उससे सेवा कैसे हो रहा है। तो तुम्हारा जो जगत मिथ्या है वो भी आधारहीन है, सिद्धांतहीन है, और तुम जो जीव को ब्रह्म कहते हो ये भी बात नहीं गलत है। ये महाप्रभु जी का सबसे अधिक सिद्धांत, क्योंकि अपरिमिता ध्रुवांतरुद्धो यदि सर्वगता, वेद मंत्र कहेगा अगर जीव ही सर्वगता हो जाए, सब कुछ हो जाए, भगवान हो जाए, तो तरह ही शास्त्र देती, ये जो शास्त्र और शासन का जो भाव है, सेवक और सेव्य का भाव, वो कहाँ रहेगा। और यदि सब ब्रह्म ही हो जाएंगे तो फिर कौन किसके ऊपर शासन करेगा, फिर तो सब भगवान में लड़ाई हो जाएगी, तो फिर कौन किसको देखेगा। भागवत में एक जगह पर कहीं इसके प्रश्न बड़े सुंदर आते हैं, जैसे धिया और गाय विभाव अंतिम तत्त बपु पढ़ने से तम भक्ति जो में परिभाव हृदय सरोज, बोले आपके भक्ति जो से परिभावित हृदय वाले भक्त जिस जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं, उन भक्तों को पर अनुग्रह करने के लिए आप उन्हीं उन्हीं रूपों में प्रकट हो जाते। जैसे भगवान का जो कृष्ण के जो वास्तविक रूप है किशोरा कृति है, श्याम है वह परम रूप हम अभया के सौरकम दे, लेकिन वह किशोर स्वरूप भक्तों के भावना के अनुरूप कभी बाल भी हो जाते हैं, कभी पौगंड भी हो जाते हैं। जैसे दिया और गाय की बावन किंतु बाल पौगंड नाम निश्चित बावन होना, ये कोई भगवान के कोई 10-20-50 रूप नहीं है, एक ही परम तत्व, एक अमेवा परम तत्व स्वाभाविक अचिंत शक्ति है, चतुर्धाम वही एक तत्व राम नृसिंह बावन आदि रूपों में, लेकिन यहाँ पर राम नृसिंह बावन भेद नहीं कर सकते, लीलागत उसमें है रसम उत्कृष्ट है, लेकिन है एक ही तत्व। तो अगर जीव भी भगवान के समान हो जाए और उनके साथ तुलना कर होते गलत है, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अपरिमिता ध्रुवांत अनुभृतो यदि सर्वगता, जीव यदि सर्वगता हो जाए, सब कुछ जानने का जैसे माया का अधिश्वर हो जाए, तो फिर पूरा जो प्रकृति का नियम वो बिगड़ जाएगा। तरह शास्त्र देते नियम दुर्बन आचरित जन्मयम तद विमुंचन यंत्री भवे सम अनुजानता जल मतन मत दुष्ट। अगर जीव नियंत्रित हो जाए, जैसा कहते हैं कि माया में जब आ जाते हैं तो जीव हो जाते हैं, और माया से मुक्त होने पर वो ब्रह्म हो जाता है, वो ब्रह्म को भी माया में बस भी समझते, बोला ऐसा सिद्धांत है दुष्ट मत जल मतन मत दुष्ट है। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत सिद्धांतों को अगर महापुरुष नहीं आते तो ये गुरु वर्गों के विचार में मुँह से सब नहीं निकलते। सारंग भट्टाचार्य को जो सिद्धांत के द्वारा खंडन आदि किए, प्रकाशानंद जी को जो खंडन आदि किए, उन्हीं सब तत्वों को हमारे गुरु वर्ग में रखे, इनका सिद्धांत का भी वैशिष्ट रहा और रस का भी वैशिष्ट रहा। सिद्धांत भी चरम सीमा पर आरूढ़ हो रहे हैं तो रस में भी इसकी कोई तुलना नहीं है। जिस प्रकार के ब्रज की रसमयी भक्ति को जैसे महाप्रभु जी कृपा से प्रदान किए, उनका अद्भुत अवदान है। जो आजकल हम जैसे महाराज जी दामोदर का जो पाठ कर रहे हैं, अगर सनातन गोस्वामी का टीका आदि ना हो तो सूखा जा जाएगा दमोदर से रस भर दिए। जैसे उन्होंने मुखाम भोजम अवक्त नीलय वृतम सुंदर स्निग्ध रक्त गोपिया मुहूर्त चुम्बितम बिंबा रक्ता धरंग में सदा में मनस्या विराश्रम की मन में इत्यादि जो बोले अलम लक्ष्य लावे। ये जो सनातन गोस्वामी जो उनकी जो व्याख्या करे दंते मुखाम भोजन कृष्ण के जो मुखार बिंद है कितना सुंदर है। इन गोस्वामी यदि भावों का अनुगमन नहीं करेंगे तो एक मुखाम बोल का कभी दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि अवक से नीले बोल रहे हैं जिसका कोई अभिव्यक्ति नहीं है कैसा है। लेकिन फिर भी गुरु वर्गो ने अपने अनुभव के द्वारा जितना उनको हुआ उसको अभिव्यक्त श्री सनातन गोस्वामी जी को पाली टीका में कई जगह पर बोलते हैं कि कृष्ण के चरण से लेकर शिखा पर्यंत सभी दर्श नहीं है कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जो देखने योग्य ना हो। तय दर्शनीय अवगय उदारे विलास हासे चित बाण सुते हृत आत्मनो हृत प्राणं च भक्ति अनिच्छतो गतिर अनमी प्रति कपिल देव जी के बाद वचन को बिल्कुल दामोदर स्तर से मिलता जुलता वहाँ भी जो कार्य भरण देव मोचम न मोचा वधिम वा न चंद्र मिलने हम बड़े साधक भी है इदंते बबूरनाथ गोपाल बालम सदा में बनस्या विरासतम की बनी। अगर ये विग्रह इस गोकुल इस वृंदावन में हमारी स्फूर्ति हो स्थिर से लेकर के नख से लेकर शिखा प्रजन दर्शन होता रहे तो हमें अन्य लाभों से क्या क्योंकि उनका जो दर्शन है वो अवय जो है अनुप्रसन बड़े ही दर्शनीय है दर्शनीय नहीं है उदार कृष्ण के जिस अंग से जो भी मान लो चरणों में उतना सौंदर्य बड़ा है ध्वज ब्रज अंकुश जब आदि से 19 चिन्हों से युक्त एक एक चिन्हों के अगर ध्यान किया जाए तो कोई साधक के लिए बहुत चीजें हो जाएगा। और ये जो चिन्ह का जो ध्यान है अगर गोस्वामी का नहीं आते तो हमें अनुभव ही नहीं होता कि उनके चरणों में कितना चिन्ह और कैसे ध्यान करते हैं। तय दर्शनीय अवय उदार चरण से लेकर के घुटने कमर वक्षस्थल उदर प्रदेश खंड देश सभी है लेकिन करके मूल्य अतिशय दर्शनीय कोई वस्तु है तो मुखार मिल रहा क्यों क्योंकि विरास हासे मुखार दिन में अनहमु की अपेक्षा वैश्विक एक तो मधुर मुस्कान और इच्छित बाम सूखे तिरछी कटाज और फिर
नाम गुला अनाउंस अच्छे पांडा विदा नीत नाम गुला अनाउंस
कई कमलों के द्वारा छा दिन है तय दर्शनीय अवय उदारे विलास हास इच्छित बाम सूखे कैसा है बोले जस्य आननम मकर कुंडल चारु करना भ्राजक कपोल सुभगम सुविलास हासम नित्य उत्सव सत्रिपि विसली तिमंतो नार्यो नारस्य मुदिता कुपिता निमेत्य जिनके मुखारी मकर के कुंडलों से आच्छादित हो रहा है सुशोभित हो रहा है ऐसे लग रहे मानस श्याम नेत्रों पर बिजली बार बार चमक रही हो और चमक ही नहीं रही स्थिर हो चुकी हो क्योंकि आकाश की जो बिजली चमकती है तो एक क्षण में विलीन हो जाती है क्षण प्रवाह है लेकिन कुंडल जो है हर समय उनके मुखार जिनको सौंदर्य को बढ़ा रहे अगर काले श्याम मेघ के ऊपर शांत प्रयोग तो सौभाग्य के ऊपर बिजली स्थिर हो जाए तो उसका सौंदर्य देखने लायक होता है। और फिर उसके ऊपर यदि हंसों की पंक्ति चले उनके जो धन पंक्ति है मानो मेघ के ऊपर हंसों की माला है पंक्ति है जस्य आननम मकर कुंडल चारु करना भ्राजत कपोल सुभगम सुविलास कपोलों पर और मधुर हास से हित आत्मनो सुविलास जस्य आननम मकर कुंडल चारु करना भ्राजत कपोल सुभगम सुविलास नित्य उत्सव सत्र की विसली जीवन ये जो कृष्ण के जो सौंदर्य है ये ब्रजवासियों के लिए नित्य उत्सव है क्योंकि ये जो मुखार भी ना पूरा दर्शन नहीं होता इस समय में इस जो अतिरिक्त रहते कुछ केसों से ढका हुआ है कुछ गांवों के धूल से ढका हुआ है इसलिए सुगोपियाँ कहते दिन परिचय नील कुंतल वन रुहानम दीप प्रदापृतम घना रजस वनम दर्शन मुहूर मानसिंह स्वरम नील चक्षर अगर पूरे सौंदर्य के साथ में मुखार भी उसका पान हो जाए तो व्यक्ति अपने धैर्य को खो देगा अपनी चेतना को खो देगा। कृष्ण ने धीरे धीरे अपने उस सौंदर्य को अपने भक्तों को पान कराते हैं और एक गोस्वामी गणों का उदाहरण है जो उनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है इसलिए तो किसी कवि ने कहा कि देखा नहीं वह मोहन मूर्ति बिनु बाधा कोई कह सकते क्यों कर कूड़ कलंक हुई राजा। इस मुखारविंद को बिना बाधा जिसने नहीं देखा कृष्ण का वही कह सकते राजा जी घर परिवार छोड़ क्यों बनी को छोड़ क्यों कहते स्वामी निहंतु पूरा शपथ नया भरपुर भजन तो गुरु का पितर राजम चेतावती चली कुलम कलंक की तथा रामानुज तनो तुम अमानुरागम। ये जो अभिव्यक्ति हो रही है ये तो ऐसा सौंदर्य है सच में महाप्रभु जी नहीं आते थे आज हमें नहीं समझ में आता था क्योंकि उसको लोगों ने अव्यक्त निर्गुण निराकार निर्विशेष करके छोड़ दिया था लेकिन महाप्रभु जी वैशिष्ट ने दिखाया कि जिसको तुम ऐसा कहते उसको जरा जाके देखो तुम जाकर काली जी के तट पर देखो जन नारदा ये सुकर अगम्य वृंदावने जंजुल मन जो मुझे सर कृष्ण ये जो हरने के भी क्या अतरा से किंचित परमों का उत्तम इस वृंदावन के बड़ा रहस्य है बहुत कुछ है क्योंकि पाँच मिनट में किस विषय को कहूँ यहाँ पर सब विषय शुरू हो जाते हैं लेकिन महाप्रभु जी महाराज जी का आदेश है कि उस शब्द अपने वचन से कहा जिसमें जो भी भूल त्रुटि उसके लिए क्षमा चाहूँगा कई दिनों से कथा सुनने का स्थान को संयोग नहीं मिल रहा था किसी कारण से लेकिन आज कुछ कथा भी मिलने को मिला और साथ में कीर्तन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे करके अपने वचन पर ही विराम लेता हूँ वांछा कल पत्र
भागवत प्रभु
You want to speak?
Om Jnana Sivyamdasya Gnana Savatraya Chakshu Rangaritan Yena Tasmai Sivyamdasya. First of all, I would like to offer my most humble obeisances unto the lotus feet of my Diksha Guru, thousands of times, millions of times, my Sharapa, unto His Divine Grace, Sisi Mahatma, Sisi Bhaktivedanta Swami, Sri Prabhupada. And then again, I would like to offer my Sharapa Pandjali millions of times unto the lotus feet of my Shiksha Guru, His Divine Grace, Sisi Mahatma, Sri Bhaktivedanta Nayana. I would also like to offer my respects to all of the Chidandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas and Vaishnavis who are attending the conference. Srila Gurudev has ordered me to speak something about the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. By his mercy, by the mercy of Srila Prabhupada, I will try to relate some few things that I have learned. There is a story about Sri Chaitanya Mahaprabhu's taking sannyas and what was the meaning behind his sannyas lila. In this conversation in Sri Chaitanya Charitamrita, he relates that Mahaprabhu's lamenting that the Mayavadis, the Karmavadis, the logicians, the students, so many persons, they have escaped his net. He wanted to flood the whole world with love of Godhead, but somehow these impersonalists and others are fleeing, and he could not capture them. So he wanted to capture them. He wanted to capture them, and so therefore he devised this idea, this trick. I'm going to trick them. I will take sannyas, and then they will have to offer me respect, and by that service, eventually they will be captured up in the flood of love of Godhead. But we should understand also, like besides this statement here, there is some other story, like in Chaitanya Bhagavat, how when Sri Chaitanya Mahaprabhu was giving class to his students, to give some examples, to giving class to his students, he started chanting Gopi, Gopi, Gopi. Like this, one of his students became angry. Why you are chanting Gopi, Gopi? If you are a Vaishnava, you should be chanting Krishna. So then Mahaprabhu, he was deep in the mood of Radha. So he said, why I will chant the name of that crooked person, Krishna? That he has killed Bali from behind the tree. He has stolen all the wealth of Bali Maharaj. He has made the ears and nose of this woman to be cut off for his own purposes. So these are similar to the statements of Srimati Radhika in the Pramara Gita. So like this, he was in this mood and he became angry at the student and chased him with a stick. So the student, he became upset and he started speaking with the other students. Oh, why he is chasing us? We are also the sons of Brahmins. He is nothing special. How is it that he is going to beat us with a stick? Only he is the son of a Brahmin. He is not a king that he can take a thunder and give us such punishment. So like that, they began to talk. Then Mahaprabhu, he started thinking. And he was speaking out loud that I have made this pipali tanda. Pipali tanda is a kind of medicine that removes mucus from the body. So I have made this medicine to remove the mucus from the body, but it has increased the mucus. It has made it worse. So therefore he said, I will have to devise some means to resolve this issue. Nityananda, he understood. He could understand and he began to lament. Now Mahaprabhu will take sannyas. He will shave his sikha, he will shave his hair, he will get rid of his Brahmin thread and he will become a sannyasi. Also there is the story of how the Brahmin was not allowed to go to the bhajan, the kirtan, at the house of Srinivas, at the Srivas Thakur, that he cursed Mahaprabhu. Because you wouldn't let me enter this house, you will have to leave the happiness of household. But Mahaprabhu has a very confidential conversation with Lokanath Goswami, which is related by Nityananda Das, the disciple of Janava Mata, in the book Prem Vilas. And in this confidential conversation, he tells him, these are only external reasons, the curse of the Brahman, etc. But actually, he said, I have come to Godadesh in this mood of Srimati Radha. And I want to experience the separation that she feels in her love for Sri Krishna. That she has become very lean and very thin and has neglected herself, being in such anxiety in separation from me. She does not even look at the face of another man. And in this anxiety, she has given up everything for me. She has given up her family, her wealth, all these things. But still, she is suffering. Still, she is suffering this pain. And in this pain, sometimes she begins to curse and speak badly about me, to the flowers and the Yamuna, etc. But then as soon as she sees me again, then she becomes very happy. Like this, he is relating all these things to Lokanath Goswami. Well, then he tells him that I have come only for this purpose. I have come to accept this mood of separation. A mood that even my friends, my servants, my mother, my father, no one knows. Only the gopis understand this mood. And because of Srimati Radharani's deep love for me, I am greatly indebted to her. Therefore, my only purpose to take sannyas, he said, was out of necessity to take on the mood of Srimati Radharani. Then he explains how when Srimati Radharani, she is always decorating herself in blue cloth, which is the complexion of Bahadur has come. That this gives her happiness when she accepts the clothes, the blue colored cloth, the color of Sri Krishna's body. But in separation from him, She accepts Aruna Vastu. She accepts the saffron colored cloth. And she thinks of herself as the maidservant of Sri Krishna. And in the separation mood, the gopis and Radha and the gopis have given their entire life to Krishna. And so Mahaprabhu says, now I want to give my life to Radha. Therefore, I will accept the complexion of Radha, and I will accept the saffron-colored cloth, and I will become her maidservant. And then, by this act, I will attain happiness. I will take on the saffron-colored cloth of the mood of separation, and I will sing the glories of Srimati Radharani. Her glories are unlimited. O Lokanath Goswami, her glories are so unlimited that even if I took birth in this world 100 times, I could not finish singing the glories of Srimati Radharani. I will sing these glories all over the entire universe, flooding the universe with the glorious fame of Srimati Radharani, and by this act, I will receive her mercy. And when I receive her prema, then I will dance and sing kirtan, and the dust of Vrindavan will be all over my body. So in this way, Mahaprabhu gives this very confidential meaning of why he has taken sannyas. He has given this to Lokanath Goswami. That this is the real meaning. That I want this mood of Srimati Radharani. I want to sing her glories. I want to inundate the whole universe with the glories of Srimati Radharani. This is also the responsibility of those persons who follow in the footsteps of Srimad Mahaprabhu and accepting the Aruna Vastra, accepting the saffron cloth, accepting this mood and moving into the preaching of the glories of Krishna consciousness, of the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur established the Tridandi Sannyas, the Tridandi Bhikshu Sannyas, after the great teachings that have been come down for so many thousands of years. Srila Gurudev has given this information in his 5 essays book about the ancientness of the Tridandi Bhikshu Sannyas. And he gave this under the order of Srila Bhakti Vinod Thakur. This is Bhakti Vinod Bhara. Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj gave one song about Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta, in which he told Bhakti Vinod Dara Jala Shankada that this Dara of Srila Bhakti Vinod Thakur is the water flowing from the Shang in the Arti to Srila Prabhupada. And he said, Roda Nahiyar, there is no stopping the flow of this Bhakti Vinod Dhara. And Srila Bhakti Vinanta Trivikram Maharaj, in his Arti song in praise of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, told that Sri Vinoda Dhara Thaila, that this oil in the Pancha Pradeep lamp being offered in the Arti to Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, that this Tyla, this oil, this is the Bhakti Vinod Dhara, which is illuminating the knowledge of the transcendental knowledge of Krishna consciousness to everyone. And what is this Bhakti Vinod Dhara? Srila Bhakti Vinod Thakur, in one poem that he wrote, says, Radha Pada Virakabu Krishna Nahi. No one can obtain Krishna without worshipping the feet of Srimati Radha. It is not possible. Radha Dasira Krishna Sarva Vede Bole. All the Vedas declare that Krishna becomes purchased by the maidservants of Srimati. So this is the glorious teaching that Sri Chaitanya Mahaprabhu has brought to us in his sannyasa leela. This is the Bhakti Vinodara which has been given. But something more special, just as Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta brought this Bhakti Vinodara, just as Srila Bhakti Prajnana Kesha Maharaj, my Srila Prabhupada Bhakti Vinodara Swami Maharaj, Srila Bhakti Rachak Srila Maharaj, all of them brought the flow of this Bhakti Vinodara. Now, Rodha Nahiyar, under the guidance of Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, the Bhaktivedanta is being poured all over the world.
Avadan of Mahaprabhu.
Glory of Mahaprabhu.
So I'm completely unqualified and I feel very nervous talking in front of such a huge crowd of elevated Vaishnavas and Vaishnavis. But on the order of Shiva Gurudev, I will try to say something.
You have read everything, all the songs of
the speciality
by Guru Maharaj and everything. Thank you.
Sachinandan Gora Hari, Sri Chaitanya Mahaprabhu.
You can preach.
You so, can preach. Shiva Vishwanath Chakravarti Thakur composed one shloka. Adarya Bhagavan Vrajasthanayas Tadam Vrindavanam Ramyakachit Upasana Varmyakachit Upasana Vargena Vadu Dvajanaya Kapita Shrimad Bhagavatam Amanana Mumanam Vrema Humarka Mohanam Chaitanya Mahaprabhu In this shloka, he captures the essence of the speciality of Mahaprabhu and the speciality of Rupanuga, Gaudiya, Guru Bhava, Rupanuga line. In this shloka, he is saying that Aradhya Bhagavan Vrajasthanayas, the worship of Sri Krishna in Vrindavan, Rajendranandana Sri Krishna is the topmost worship, and the worship of his holy Dham, Vrindavan Dham, is included in that. Then Ramyakachit Upasana Vakyanayakalpataya do. The method of worshipping Krishna, Sri Krishna, Rajendranandana Krishna, is there performed by the gopis. Their bhajan, their service, their worshipping of Krishna is the topmost form of bhakti, the purest, the sweetest, the highest. Their mood of complete self-dedication, no self-interest whatsoever to Krishna, this is the highest, topmost, sweetest form of bhakti.
That the worship of Mahaprabhu
and then
only goes up to the stage of Sakti.
Sri Chaitanya,
after that,
Srimad Bhagavatam Pramadana, where is the end to that? Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is the topmost evidence because it's the essence of all scriptures. And it actually explains everything from top to bottom. So in Srimad Bhagavatam, especially in the Ras Panchadhyay and the five deeds that the gopis glorify Krishna, that mood is given. And we should also, if we want to get that kind of rare bhakti, we should follow in the footsteps of the gopis. Only by following in the footsteps of the gopis and being under the anugasya of these particular gopis, can we get that topmost bhakti, Brajpan, especially Brajpan in Manjari Bhav. So then, This is the opinion, this is the consideration of Shiman, of Sachinandan Gaurari. And Vishwanath Chakravarti Thakur says, I have no regard or no, I have no respect, no regard for any other cheating opinions, for any other opinions. This is one pointed. This is what I want to do. This is the topmost thing. There's nothing else higher, better, more attractive than this. So therefore, this is what we should follow. Now, this is like a sutra, and from this sutra, like a condensed saying, our whole philosophy is there, and within that is the speciality of our line, is that we're not just we're not worshipping Krishna in a mood of those gopis who are naikas, who are heroes and want direct relationship with Krishna. We are worshipping as conditioned souls. We can only get up to that position and perform that bhakti if we adopt the mood of service to Srimati Radhika. That means Radha Dasyam, or Manjari Bhav, or Palya Dasi Bhav. This is the speciality of our Rupa Nuga line, like that. So, now Bhakti Vinod Thakur, he took this teaching of Vishwanath Chakravarti Thakur and expanded it in the first invocation shloka of Dashmula Tattva. And the whole of Dashmula Tattva is really an explanation of that shloka, but from a more philosophical point of view. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Radha Bhagavan shloka, is like from a rasa vichar, rasa tattva vichar, while Srila Bhakti Vinod Thakur's the invocation to Dashmula Tattva and the whole of Dashmula Tattva is more from a tattva vichar, from the point of view of philosophy. It establishes the philosophical foundation for following in the mood of the Manjari, like that. Now, in the biography, Srila Gurudev says, anyone who doesn't know these two shlokas, and I admit I still don't know the second shloka by heart, but Gurudev says, anyone who doesn't know these two shlokas is not really my disciple. So Gurudev expects very high standards from us. Why? Because what he's offering us is something very special, and I can only speak for myself, but I know many other people in the Sangha share my feeling that we only came here because something very special is being given here. Which we cannot hear and cannot get anywhere else in the universe, actually. So if we want to get that something special, then we have to follow in the footsteps of the gopis and in the footsteps of those who came from the spiritual world and can give us this rare gift. And this is, as far as I understand, the speciality of Mahaprabhu. What he came to give, the special thing he came to give, was Unatva Valarasamsva Bhakti Shriyam. Unatva Jalaras refers to Srimati Radharani Madanakya Mahabhar, and Svabhakti Shriyam refers to beauty, her beauty, that means her helper, the Manjari, and the suffix, like this. This is, if we want to do this, then we have to follow. And to follow means we have to follow Srila Gurudev and really, you know, seriously take his instructions, his requests, his orders, his mood into our heart. In this way, our life can become successful and we can become completely peaceful and happy in this life and in the next life.
Today, our devotees who have been working for many, many months, even up till last night and this morning, they finished the printing of the new magazine, The Rays of the Harmony.
Yeah.
especially Sripad Avalokrishna Prabhu, Sripad Krishna Karunya Prabhu, Sripad Jayagopal Prabhu, Srimati Bhaiya Yanki Mala, Devi Dasi, they work tirelessly to compose and publish this beautiful magazine. Sri Gurudev became very happy this afternoon receiving it, and I can recommend that the articles in it are so amazing that you will receive very much deep and very valuable inspiration by studying this magazine. It's available just after class on the book table for everyone. Yeah. Then, secondly, we want to announce the names of the devotees who received initiation today. Maharaj, all of us, we have to hold a few names. Today receiving initiation Diksha, Srimati Puleshwari Devi Dasi. Puleshwari Devi Dasi, India.
Karunamayi Dasi.
Karunamayi Dasi receiving Diksha. Madeline.
Gulmaro. Mallika.
Mallika Devi Dasi. Rasa Kelly Devi Dasi receiving Harinam and Diksha from Russia.
Same name. Sushma Devi Dasi.
Sushma Devi Dasi from Patna.
Same name.
Sunita Devi Dasi from Patna. Same name.
Martin Webster
from England.
Madhumati
Devi Dasi.
Krishna Ram. Ranjan
from South India.
Krishna Das
Prabhu. Yasomati Nandana. Son of Gokul Prabhu, same name, receiving Gopal Mantra and Harinam.
Banabhat
Subna from Tirupati.
Basanti
Devi.
Upen
Basumati from Rupsanathan Gaudiyabhat.
Upendra
Brahmachari. Sivil Amsutriya.
From Germany.
Suchitra Devi Rasi.
Nicolina Beder.
From Germany.
Nandini
Devi Rasi.
Lara Smeret
from Germany.
Labangalata
Devi Rasi.
Manju
Simaha from Bihar. Same name, Manju Devi Rasi.
Prasanta Kumar Ghosh.
Same name, Prasanta.
Urmila Ghosh.
Same name.
Rajkumari.
Mathura, same name.
Prahlad.
Mathura, same name.
Nimai
Garcia Soares. Brazil.
Nimai Das.
Krishna Priya Dasi, daughter of Gokul Prabhu. Australia. Family. Same name, Krishna Priya Dasi.
Pandavidar.
One more announcement.
Hum log yahan 12 din